कारवान कुरान लेक्चर नंबर 974 सूरतुल कद्र आयत नंबर 4 और 5।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तनज्जलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र।
फरिश्ते और रूह इस शब में अपने रब के इज़्ज़न से तमाम हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। ये रात तुलू फजर तक सलामती है। गुज़श्ता दर्स में आयत नंबर 4 के अल्फाज के मानी में हम रूह का माना आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे और हमने अर्ज किया, जहाँ तक हम पहुँचे थे वो ये कि वो अल्लाह की खास मखलूक कि जिसका राबता जब मादी जिस्म से कायम हो जाए इंसान के, तो इंसान जिंदा कहलाता है, उसके अंदर हयात पैदा हो जाती है, उसको भी रूह कहा जाता है। बस एक इंसान के अंदर मौजूद उस खास अल्लाह के अमर से पैदा होने वाली मखलूक को रूह कहा जाता है। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला जो अपने नबियों की तरफ वही नाजिल फरमाता है, उस वही को भी कुरान मजीद ने रूह कहा है। तवज्जो फरमाएं, सूरतुश शूरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वकदालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, और इसी तरह हमने आपकी तरफ एक रूह को वही फरमाया, रूह को वही किया, मिन अम्रना अपने अम्र से। बस इस आयत में वही इलाही को रूह कहा गया है। और इसकी मुनासिबत शायद ये हो कि जिस तरह मुर्दा मादी जिस्म रूह के आने से, रूह के साथ राबते की वजह से जिंदा हो जाता है, इसी तरह जब कोई दुनिया ही को सब कुछ समझने वाला, जो दुनिया परस्ती करते करते, दुनिया के पीछे दौड़ते दौड़ते, अपनी ख्वाहिशात नफसानी के पीछे दौड़ते दौड़ते भूल गया हो कि इस दुनिया के बाद भी उसने अपने परवरदिगार का सामना करना है, उसको जब अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम का यानी इस वही इलाही का मसलन कुरान करीम का सामना होता है, तो बाज़ औक़ात अगर वो तवज्जो करे और अपनी ख्वाहिशात से हट कर अपनी अक्ल से इस वही इलाही पर गौर करें, तो गोया के वो एक नई जिंदगी में दाखिल हो जाता है। गुज़श्ता जिंदगी कि जो फकत दुनिया परस्ती की जिंदगी थी, उसे अल्लाह तबारक व ताला कुरान में ऐसे शख्स को जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा कहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान कहता है कि ये देखने में जिंदा लगते हैं, लेकिन ए रसूल ये लोग मुर्दा हैं। तो इनके अंदर वही इलाही कुरान मजीद की आयात जब असर करती हैं तो इनकी जिंदगियों का अंदाज बदल जाता है, एक नई जिंदगी में ये दाखिल हो जाते हैं। और उस नई जिंदगी की मुनासबत से गोया ये नई जिंदगी इसका सबब क्या बनता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली वही और मसलन आज कुरान करीम। तो इसलिए वही इलाही को भी इस मुनासबत से रूह कहा गया है। कुरान करीम में एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अव मन कान मैतन, और क्या वो शख्स के जो मुर्दा था, फअहयैना हो, तो हमने उसे हयात बख्शी। ये मुर्दा क्या मुराद है, ये मुर्दा वो नहीं है कि जो मुर्दा कब्र में पड़ा होता है, बल्कि वो कि जिसको दुनिया के अलावा किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं था, नफ्स परस्ती और ख्वाहिश परस्ती के अलावा किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं था, ऐसी ही ज़िंदगी उसकी गुजर रही थी गोया कि ये मुर्दा था, तो हमने इसे ज़िंदा किया, हयात बख्शी। और ये हयात कैसे बख्शी, वजअलना लहू नूरन, और हमने इसके लिए एक नूर करार दिया, यमशी बिही फिन्नास, के इस नूर की रोशनी में अब वो लोगों में चलता फिरता है। पहले अंधेरों में चल रहा था, इसको सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानी इसको अंधेरों में, जहालत के अंधेरों में, गुमराही के अंधेरों में खींच कर लेकर जा चुकी थी, और गोया वो अंधेरे ही इसकी कब्र बन चुके थे और ये अपने आप को दफन कर चुका था उन चीज़ों में, लेकिन हमने इसको जिंदा किया। तो ये हयात की किस्म जिसे कुरान मजीद हयात कहता है और ज़िंदगी कहता है, इसकी मुनासबत से शायद اللہ تبارک و تعالی نے وحی الہی کو بھی روح کا نام دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور معنی میں لفظ روح استعمال ہوا, اور وہ لفظ خود اسی سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 میں ہے, تنزل الملائکت والروح. یہاں پر روح سے کیا مراد ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح. تو یہاں پر جو مختلف روایات کی روشنی میں مفسرین نے فرمایا ہے, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر روح سے مراد وحی الہی بھی ہو سکتی ہے, یعنی فرشتے اترتے ہیں اور وحی اترتی ہے, وحی نازل ہوتی ہے. جیسا کہ پہلی آیت میں بڑا واضح طور پر فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, تو اس روح سے مراد وحی الہی یعنی قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے. اس سے مراد بعض روایات کے مطابق روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کو بھی روح قرآن مجید نے خود فرمایا ہے. توجہ فرمائے, مثال کے طور پر فرمایا نزل به الروح الامین, اس قرآن کو لے کر روح الامین نازل ہوئے ہیں, اور روح الامین وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے, اور حضرت جبرائیل ہی وہ فرشتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے پاس وحی قرآن کریم کی وحی لے کر آیا کرتے تھے. تو یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے نزل به الروح الامین, روح الامین یعنی امانت دار روح اس کو یعنی قرآن مجید کو لے کر اترے ہیں. بس یہاں پر الملائکت والروح سے مراد حضرت جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کے بڑے درجے کی وجہ سے, بڑے مقام کی وجہ سے باقی فرشتوں سے ہٹ کر ان کا نام لیا گیا, الگ سے نام لیا گیا. اور یہ بعض روایات میں اس طرح سے بھی فرمایا گیا کہ روح جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر کوئی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے. تو یہ اس کا خلاصہ تھا. اللہ تبارک و تعالی اپنی باتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے, ہم اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں کہ جتنا روایات کی شکل میں اور قرآن مجید کے خود قرآن مجید کے الفاظ سے ہم جان سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.